ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय है 12 और श्लोक संख्या 21। विज्ञाय तौ उत्तम गाय किंकरौ अभ्युत्थितः साध्वसः विस्मृत क्रम ननाम नामानि ग्रणन् मदद्विषः पार्षात् प्रधानौ इति संहत अञ्जलिः। विज्ञाय तावमुत्तम गाय किंकरौ अभ्युत्थित साध्वसः विस्मृतिक्रमः ननामनान्मानि गुणन् मदुद्विषः पार्षत् प्रधानाविति संहताञ्जलिः। विज्ञाय तावतुत्तम गाय किंकरौ अभ्युत्थितः साध्वस विस्मृतः क्रमः न नाम नामानि गुणन् मदद्विषः पार्षत् प्रधानविति संहताञ्जलिः। विज्ञाय तावतुत्तमगाय किंकरः अभ्युत्थित साधस्वम् स्मृतक्रमः न नाम नामानि गुणन् मदुद्विषः पार्षत् प्रधानविति संहताञ्जलिः।
Namaste।
विज्ञाय जानकर, तव उन दोनों को उत्तम गाय उत्तम यश वाले विष्णु के किं करो दो दास अभ्यथितः खड़ा हो गया साध्व सह हड़बड़ाकर विस्मृत बोल गया क्रमः उचित व्यवहार ननाम नमस्कार किया नामानि नामों को ग्रहण उच्चारण करते जपते मधुद्विषः मधु के शत्रु भगवान के पार्षद पार्षद प्रधानौ प्रमुख इति इस प्रकार सम्मत बद्ध अंजलि हाथ जोड़े। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेशी भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। भगवान के पवित्र नाम का जप हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने चार भुजाओं वाले तथा सुवेश वाले विष्णु दूतों को देखा तो वे जान गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वे चकरा गए, किंतु फिर भी भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन संपूर्ण होता है। यद्यपि विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं, फिर भी यदि निष्ठापूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अतः भक्त चाहे संकट में हो या सुख में हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करता है। जब वह संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है, और जब भगवान विष्णु या उनके पार्षदों का दर्शन करते ही इनकी स्थिति में होता है तो वह भगवान को महामंत्र के जाप द्वारा प्रसन्न कर सकता है। यह महामंत्र की परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसे बिना रोक टोक से जपा जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विज्ञाय तावद् उत्तम गायकिंकर अभ्युत्थित साध्वस विस्मृत क्रम न नाम नामानि गुणन मदुद्विषः पार्षद प्रधानविते सहता अंजलि ही। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। तो ध्रुव महाराज अपनी भक्तिपूर्ण सेवा, जहां ध्रुव प्रदेश का सारा साम्राज्य प्राप्त करके भी भगवान को एक पल नहीं भूले हैं, हाँ, वैसी स्थिति में परिपक्व दशा आ गई और उनका जाने का समय आ गया, हाँ, ये संसार छोड़ने का समय आ गया। ये प्रदेश जब महाप्रलय होता है तभी उसका विनाश होता है और उसकी अवधि पर्यंत चिरंजीव होने का ध्रुव महाराज को वरदान प्राप्त हुआ था। उन्हें मांगा था, जाए कहां, फंस गए बेचारे, लेकिन भगवान को भूले नहीं है, हाँ? अब ये परिस्थिति आ रही है कि इनको पता नहीं, हाँ, फिर भी ऐसे अकस्मात रूप में उनको ले जाने के लिए विष्णुदूत विमान लेकर आ गए, विष्णुदूत विमान लेकर आ गए। तो ऐसी स्थिति जब होती है, जब भगवान के स्मरण में सदा ध्रुव महाराज बने रहे, इनको पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया है क्या नहीं, भक्ति में समय बाधक नहीं रहता, हाँ, भगवान के धाम में भी इस समय की उपस्थिति उनकी गहराजरी में है, यानी कि भगवान चाहे वो समय का किसी भी स्वरूप अपनी लीला में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा बिना समय अपने आप कुछ नहीं करता। भगवान ने भौतिक सृष्टि में समय को नियंता बना दिया है, यानी कि ऑटोमेटिकली काम कर लेगा, लेकिन उसकी अवधि होती है। भूत्वा भूत्वा प्रलियते, ये स्थिति संसार की जो है वो कालचक्र नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति में ध्रुव महाराज को भी पता नहीं चला। और हम जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज का शरीर कोई बूढ़ा का बताया नहीं जाता, समय की कोई वहां पाबंदी नहीं रही है, ऐसे ध्रुव प्रदेश में वे जब ब्रह्मा जी का के आयुष्य तक का वो चलता है, यानी कि महाप्रलय का समय आता है, उससे पहले ध्रुव महाराज को वैकुंठ धाम में जाने का नौबत आ गई, उनको पता नहीं था। तो अकस्मात यदि कोई चीज सामने आती है जो जिसे जान पाना भी मुश्किल होता है, किसी भी विधि औपचारिकता इत्यादि भी ख्याल में सामने नहीं आती कि क्या करना क्या नहीं करना है, ऐसी स्थिति में यहाँ ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के नाते कम से कम भगवान का नाम ग्रहण कर पा रहे हैं। विष्णुदूत भगवान विष्णु के जैसे ही सारूप्य सामीप्य सालोक्य साष्टी मुक्ति वाले हैं, तो चतुर्भुज और सुंदर अंग कांति इत्यादि धारण करके जब देखते हैं तो उनकी समझ में तो आता है कि नहीं नहीं ये भगवान के पार्षद होंगे, नहीं तो इतने मोहक मूर्ति वाले क्यों, ऐसे आकर्षक क्यों है, और मंद हंसी इत्यादि द्वारा भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। ज्यादातर ये फिल्मी पात्र जब भगवान का, रामचंद्र का या विष्णु का कोई पात्र अदा करता है तो उसके मुख से वो जो मंद हास्य निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सात्विकता में तो रहते ही नहीं, ऐसे वो राजसिक भाव से मंद हंसी जो स्मित कहलाता है वो कभी बाहर नहीं निकलता। तो ये ध्रुव महाराज ऐसे लक्षणों से वो पहचान पाते हैं, लेकिन तुरंत आवकार देने की आवश्यकता है, लेकिन आवकार की पद्धति जो रीतियां हैं वो ख्याल में नहीं आती। अनायास ही कोई भी यदि आ जाए तो सहसा हम उठ खड़े होते हैं, लेकिन ये सहसा यानी कि सहज भाव ये रागानुगा लक्षण है, रागानुगा लक्षण है। रागानुगा भक्ति में विधि बाधा डालती है, विधि पूर्वक कुछ अनुष्ठान करना है तो रागानुगा भक्ति में ठीक ढंग से नहीं कर पाते, इसीलिए रागानुगा भक्ति की आवश्यकता में ये विधि खलल पहुंचती है तो भक्तों को छूट मिलती है उस समय, क्योंकि आप विधि का पालन छोड़ दीजिए, ऐसी विधि का पालन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वोपरि तो भगवान के नाम की सेवा है। नाम यदि सतत चलता रहे तो विधि क्या करेगी बीच में, विधि की कोई ऐसी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं समझते हैं। लेकिन सहज में यदि भगवान का नाम स्मृति पर आ जाता है और हाथों से अंजलि देकर उनका स्वागत करते हैं तो अवश्य ये स्थिति को पहचानने के लिए विष्णु दूतों के पास भी काफी अकलमंदी रहे, वो कोई इनकी जो विशुद्ध सत्व की स्थिति होती है उसमें न तो क्रियाकांड या कोई पद्धति का उपचार की अपेक्षा रखे बिना भगवान इनके हृदय के भाव, भगवान के भक्तों भी इनके हृदय के भाव की ही पहचान करते हैं। तो जब भक्त भी यदि एक दूसरे भक्त के हृदय की पहचान इस ढंग से कर सकता है तो ऐसी ध्रुव महाराज की जब वैकुंठ जाने की वेला में ऐसा उनका यदि सहज व्यवहार हो तो उसमें हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देखो ये गलती हुई है फिर भी दुर्वासा मुनि ऐसी गलती को तो बहुत बड़ा भयंकर रूप दे देते हैं, लेकिन विष्णुदूत नहीं करते, विष्णुदूत नहीं करते। तो ये जो रागानुगा भक्ति का प्रयोग यहाँ समझाया जाता है कि यदि भक्ति की सारी पद्धतियों में सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधो सिहु एतयोर किंकर किंकर, ये किंकर है सेवक। जैसे विष्णु दूत भगवान विष्णु के सेवक हैं तो भगवान का नाम स्मरण इत्यादि ही एकमात्र भगवान की भक्ति का नियम बनता है। बाकी जो सारी पद्धति है श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम पूजनम वंदनम, ये स्मरण के लिए सेवा करने के लिए नौकर के समान है, सेवा करते हैं किसकी, स्मरण की।
स्मरण भक्ति यानी कि भगवान को बिल्कुल विसरना नहीं है। तो ध्रुव महाराज की ऐसी स्थिति जो हमेशा स्मरण की बनी रहती है तो वो रागानुगम भक्ति का स्तर कहलाता है। प्रहलाद महाराज की स्मरण भक्ति उत्तम उदाहरण हमें बताया जाता है। तो उसी तरह ध्रुव महाराज भगवान तो भूले नहीं है, शिष्टाचार भूले हैं, और उसमें क्या है। जब अनायास ही कोई आ जाता है तो जो शरीर की जो स्वाभाविक स्थिति है वो कार्य शिथिलता बताती है, क्योंकि वो जड़ है। तो शरीर के माध्यम द्वारा जो शिष्टाचार की अपेक्षा होती है इस समय में न हो तो क्या हो गया। वैसे भी यांत्रिक रूप से भौतिक रूप से शरीर तो शिथिल होता है, वो तुरंत सहसा काम नहीं करता। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि भगवान की विशुद्ध भक्ति में जो जो रागानुगम भाव है वो बहुत विशिष्ट ढंग से बहुत सारे भक्तों में और अपनी परंपरा में आए हुए भक्तों में काफी मिलता है। आज वंशीदास बाबा जी महाराज और रघुनंदन ठाकुर दोनों का तिरुभाव है। ये दोनों इतनी ऊंची कक्षा में भक्त साबित हुए। रघुनंदन तो जब छोटा था तब से विशुद्ध भक्त बना रहा। उसके पिताजी कौन थे? मुकुंदत। मुकुंद चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यवहार व्यतीत करता है। एक दिन बाहर जाना हुआ तो घर में रघुनंदन को बुलाया, रघुनंदन मैं बाहर जा रहा हूं तो भगवान के लिए राजभोग बनाना और भोग लगा और ध्यान में रखना कि भगवान खाए। तो छोटे बच्चे में ये सारी बातें घुस गई। उसने भोग बनाया, भगवान को ऑफर किया, तो भगवान को भोग लगाते हुए ध्यान से दिखने लगा कि भगवान खाते ही क्यों, भगवान खाते ही क्यों, अरे भगवान खाते ही नहीं, भगवान खाते ही नहीं। तो रघुनंदन के हृदय की भावनाएं उमड़ आई, भगवान खा लो जल्दी जल्दी नहीं तो मेरी पिटाई होगी। भोग का समय भी चला गया और आप खाते नहीं, इससे तो होता है क्या। भगवान जल्दी खा लो, पिताजी आएंगे तो मुझे डांटेंगे। तो सचमुच भगवान ने खा लिया और कुछ बाकी नहीं छोड़ा। और भगवान को सादर नमस्कार करके विधि पूर्वक वो वहां से निकल गया। बर्तन साफ किए, रख दिए, थोड़ी देर में पिताजी आए, रघुनंदन लाओ राजभोग लाओ, भूख लगी है। वो तो भगवान ने खा लिया। तो पिताजी खा लिया, जा फिर से खीर लगा, तू ही खा गया होगा, मेरा ख्याल नहीं रखा। और देखना कि भगवान खाए और मेरे लिए भी बचाए। तो रघुनंदन फिर से गया, भगवान ये खीर खाओ और थोड़ी बचा रखना। ये सारी घटना वो पिताजी देख रहे हैं कि ये सचमुच झूठ बोलता था या बेटा, तो झूठ नहीं बोलना हो, लेकिन ये देखो और बातें कर रहा है। तो भगवान ने खाया और रघुनंदन झट से ले लिया, भगवान बस हो गया इतना तो रहने दो। रघुनंदन दंडवत करके खीर लेकर आए, लो पिताजी खा लो। पिताजी उसके गले लग गए कि बेटा तेरी भक्ति सफल हो गई, मैं वहीं का वहीं रह गया, प्रसाद महाप्रसाद खाते रहते फिर भी हमारे में कोई ऐसी भावना नहीं जगती, ये छोटे बच्चे में जग गए। ये रघुनंदन बहुत ऊंचे किस्म का भक्त है। चैतन्य महाप्रभु इनके पिता से कहते हैं, पूछते हैं पंडित बताओ कौन पिता है और कौन बेटा है, कौन पिता है और कौन बेटा है। तब रघुनंदन के पिता ने कहा, रघुनंदन पिता है और मैं उनका बेटा हूं। अंग्रेजी में कहावत है, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैनकाइंड। बच्चों में भी सारी शक्तियां भरी रही होती है, वो भगवान की है। तो उसे जिस ढंग से हम उसकी बुनियादी तालीम दे दे, उस ढंग से बच्चा आगे बढ़ता है। तो विशुद्ध भक्ति की जब तालीम मिलती है तो क्यों नहीं विशुद्ध भक्त बनेगा, यही तो मनुष्य धर्म है। ऐसा बेटा पैदा होना चाहिए जो मां बाप का उद्धार करे। नहीं तो बेटा पैदा करने की आवश्यकता ही क्या थी। तो इस तरह रघुनंदन दास गोस्वामी भी कहते हैं इनको, और इनका चरित्र बताया जाता है। अब वंशीदास बाबा जी महाराज के बारे में बताते हैं। इसका हिंदी संस्करण तो नहीं है, वंशीदास बाबा जी के जीवन चरित्र का, कहते हैं कि नडिया में तीन बाबा जी रहे हैं, और ये तीन बाबा जी जगन्नाथ दास बाबा जी, गौरकिशोर दास बाबा जी एंड श्रील वंशीदास बाबा जी, वो सभी भगवान कृष्ण की अंतरंग भक्ति में रागानुगा अवस्था में स्थित थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन लोगों के भावों को जाना जाता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इन तीनों विशिष्ट संतों को इनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के भक्ति के बारे में समझाया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान का बहुत अति कृपालु अवतार है। कृष्ण माधुर्य विग्रह है, लेकिन उनका जो इनकी मधुरता जब तक चैतन्य महाप्रभु यानी कि औदार्य विग्रह में प्रकटते नहीं, तब माधुर्य विग्रह की माधुरी चखने को नहीं मिलती। कृष्ण भगवान उनके द्वेषियों द्वारा तो बिल्कुल समझ नहीं जाते, समझ नहीं पाते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही चाहे पापी तापी हो सभी भगवान के प्रेम की मधुरिमा को चखने के लिए लायक बन जाते हैं। तो ऐसे उदार विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ अपने गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के माध्यम से बहुत आसानी से पाए जाते हैं। ये तीनों भजनानंदी साधु जैसे बने रहे हैं और आंतरिक भजन में वो स्थिर थे सभी। वंशीदास बाबा जी विष्णुप्रिया जो श्री विग्रह को पूछते थे चैतन्य महाप्रभु के, तो ये सभी अंतर्ध्यान हो जाने के बाद वो विग्रह को उठा लाए और स्वयं पूजा करने लगे चैतन्य महाप्रभु के। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी नाम कमाई के लिए, अपना महत्व बनाने के लिए अन्य अन्य मत वाले भी हो गए, जो गौरांग नागरी इत्यादि। कई लोग वंशीदास बाबा जी महाराज को भी गौरांग नागरी में शामिल कर देते हैं, लेकिन अधिकृतता से यदि देखे जाए तो वंशीदास बाबा जी महाराज बहुत जंगली जैसे वेश धारण करते रहते हैं और दुनिया के सामने वो बहुत गूढ़ रहस्य वाले बनते थे कि सामान्य लोग उसे पहचान नहीं पाते। ये परमहंस की स्थिति पर थे और ये तीनों जपमाला भी नहीं रखते थे, तिलक भी नहीं रखते थे और नित्य नियम द्वारा कोई सेवा पूजा इत्यादि में भी भाग नहीं लेते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐश्वर्य कांदी में ये लिखा है कि भक्त लोग जो सर्वोत्तम परमहंस की स्थिति में भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो वो उनका मानस भजन कहलाता है। हाँ, और वो किसी भी नियम बाद और नीतियों से अछूत रहते हैं। ऐसे ही भक्ति किसी को अनुकरण नहीं करना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, स्मृति श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद तयात कल्पते। कि हमें क्या नीति है, क्या नियम है, क्या बाध्य है, ये भक्ति में अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी भक्ति वैधि भक्ति है। हम जूठा अनुकरण नहीं करें तो इनके माध्यम द्वारा हमारी भक्ति की सुरक्षा बनी रहती है। यदि कोई हरि भक्ति इन नीति नियमों के बिना करता है तो उसका जो नवसुखिया भक्ति का जो व्यापार है वो सिर्फ समाज में उपद्रव पैदा करता है। तो यही जो सतत स्मरण की जो उनकी स्थिति है, तो इसमें कोई सामान्य मनुष्य आकर दखलगिरी भी नहीं कर सकता। यदि कोई करता है तो उनसे दूर भागते हैं। ऐसे जंगली बने रहे कि कोई नजदीक भी ना आए, ऐसी जगह पर बने रहते हैं कि वहां लोग मल विसर्जन करते हैं तो कोई जाएगा ही कहां। बंशीदास बाबा जी महाराज का जो व्यवहार था वो इतना अनूठा था कि बड़े बड़े ऊंचे पहुंचे हुए विशुद्ध भक्तों की लेवल में उनके स्तर पे पूर्णता का परिचय कराता था और वो लोग ही उनको जान सकते थे। जो अवधूत होते हैं तो वो दूसरे अवधूतों की हालचाल का पता चला लेते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं तो दूसरे जीवन मुक्त ही उनको जान सकते हैं, जो बद्ध जीव होते हैं तो जीवन मुक्त को कैसे जाने। तो इन लोगों को शास्त्र के माध्यम द्वारा ही सीखने की आवश्यकता होती है। हम लोग जीवन मुक्त नहीं है इसलिए विधि विधानों के द्वारा भक्ति करने के लिए बाध्य है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत शरद ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें ये नहीं बताया है कि बंशीदास बाबा जी महाराज की मूल स्थिति क्या है। तो हमें ये मर्यादा में रहना चाहिए, जूठी कल्पना के आधार पर ये बाबा जी वो थे, ये इनके लिए बहुत सारा लिखा गया है लेकिन वो अनधिकृत कहलाता है। बंशीदास बाबा जी महाराज ५८५९ में इनका आविर्भाव हुआ था और बांग्लादेश में मायमनसिंह जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मजीतपुर नाम का गांव है, वहां ब्रिटिश इंडिया के समय में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था सनातन मल्ल ब्रह्मन, ब्रह्मन वो बर्मन कहलाने लगे लेकिन ये बहुत गरीब मच्छीमार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही पिता के साथ मच्छी पकड़ने जाते थे, सारा दिन उनके साथ रहते हैं। इनकी माता श्रीमती सर्वसुंदरी एक पवित्र हिंदू स्त्री थी और अपने सारे परिवार के लिए वो व्रत तप इत्यादि बहुत करती थी। उनका प्रथम पुत्र भैरव चंद्र 1859 में पैदा हुए और दूसरे दो कुलचंद्र और राजचंद्र और उसके बाद चार बेटियां हुई। तो ये भैरव चंद्र ने अपने पारिवारिक गुरु से दीक्षा ली थी लेकिन वो नरोत्तम परिवार से आता था। तो
धीरे धीरे
ये भैरव चंद्र पहले से ही थोड़े विमुख वृत्ति वाले बने हैं संसार, और खास करके धार्मिक पाखंडों के सामने वो काफी चिंतित रहते थे, उन लोगों का संग करते नहीं थे। धीरे धीरे भैरव चंद्र ने अपने गुरु के आश्रम में रहना शुरू किया और और इनके पिता माता ने भैरव चंद्र की शादी करने का सोच रखा, लेकिन शादी के बाद थोड़े ही समय में उन्होंने घर छोड़ दिया। उसने अपनी जवान पत्नी और 6 महीने के बच्चे का त्याग कर दिया और उन्होंने नरोत्तम दास बाबा जी से पुनः दीक्षा ली और नाम रखा वंशीदास। तो वंशीदास सामान्य रूप से बाबाजी महाराज के रूप में ही जाने जाते थे। जमालपुर विस्तार में एक नियोगी अखाड़े में वो रहे, वहां उन्होंने राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा की। मजीतपुर में ही 3 साल वो पंचवटी विस्तार में भी रहे और वहां से उन्होंने धार्मिक स्थलों की यात्रा शुरू कर दी। सारे भारत में ऐसे घूमे और नवद्वीप जब आए तो अपने सारी जिंदगी के अंतर्गत ज्यादातर वहीं रहे नवद्वीप में, और अपने देह विसर्जन के समय वो फिर से मजीतपुर चले गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वंशीदास बाबा जी महाराज की काफी गुण कथा इत्यादि सुनी और 1903 में इनके नवद्वीप में दर्शन हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, श्री गौर किशोर दास बाबा जी, श्री वंशीदास बाबा जी, ये तीनों अंतरंग भक्त थे, एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। वंशीदास ने अपने स्थूल शरीर द्वारा जगन्नाथ दास बाबा जी और गौरकिशोर दास बाबा जी से ज्यादा समय पसार नहीं किया था, लेकिन इन लोगों के नित्य सिद्ध महाभागवत होने के कारण वो आध्यात्मिक स्तर पर निरंतर चिरस्थाई बने, साथी भी बने हैं और उनका भजन श्री श्री राधा कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में थे इनका था। उन्होंने शास्त्र के कोई प्रस्थापित नीति नियमों का भी पालन नहीं किया था, फिर भी वो आध्यात्मिक प्रगति में कम नहीं थे, इसीलिए वो लोग अवधूत भी कहलाते थे। सामान्य मनुष्य को भी थोड़ी चीड़ चढ़े ऐसे उनका व्यवहार भी बना रहा। इन लोगों को ये भौतिक दुनिया में रहने के बावजूद भी दुनिया के साथ कोई नाता नहीं था। वंशीदास बाबा जी महाराज गंदे दिखाई देते हैं और उनके कपड़े इत्यादि ये फटे फुटे जो पोंछे होते थे ना इनका ही पहनते थे। और ये लोग बहुत दिन उपवास करते थे, कभी कभी तो पानी भी नहीं पीते थे। यदि वो मुसाफरी करते तो उनके अनुयायी भक्त लोग उनके साथ कदम मिला नहीं पाते थे, इतने जल्दी भागते थे वो। ये जब 80 साल के हुए तब भी यही दशा बनी रही कि इतनी शक्ति से वो चलते थे। यदि वो बीमार होते हैं तो बीमारी बढ़ाने वाले ही खुराक को खाते थे। और फिर भी उनके भजन में या मुसाफरी में कोई बाधा नहीं अनुभव करते। श्रील प्रभुपाद जी ने जब कर्दम मुनि का विवाह देवहूति से हुआ तो वहां तात्पर्य में लिखते थे कि एक कर्दम मुनि बहुत तगड़े दिखाई देते थे, क्योंकि भगवान के मधुर अधराष्ट्र से जो ध्वनि निकलती थी, इनकी तरंगे वही इनका रसपान करा करते थे, तो बीमारी की कोई उनकी स्थिति थी ही नहीं। उनका शरीर न खाते हुए भी रष्ट पुष्ट रहता था। तो उसी तरह यदि कोई ऐसे आध्यात्मिक तरंगे का रसपान करता रहता है तो उसकी तबीयत सुधर जाती है, बीमार आदमी भी सुधर जाता है। हमने स्वयं कई ब्रह्मचारी और गृहस्थ को देखा है जो अपनी ही संस्था में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में उन्होंने ये करके अपनी तबीयत में सुधार लाए हैं। सिर्फ हरिनामामृत का पान करके सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। वो प्रभुपाद जी स्वयं उसका निरूपण ये तात्पर्य में बताते हैं। और इसकी वजह से उनके मुखारविंद पर इतना तेज बना रहता था कि कोई इसे पूछता नहीं था भैया तुझे क्या हुआ, तो बीमार है, बीमार था तो क्या हो गया। यदि खान में से यदि कोई रत्न बिना घिसाई करके भी लेता है तो रत्न की मूल्य वही बनी रहती है, क्योंकि उसका तेज से उसे पता चल जाता है कि ये रत्न कैसा होगा। तो उसी तरह कर्दम मुनि यदि ठीक ढंग से वस्त्र परिधान नहीं करते फिर भी वो तंदुरुस्त दिखाई देते हैं, यदि वो स्नान भी नहीं करते फिर भी वो निर्मल दिखाई देते थे। तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय और 45, 46 और 47वें श्लोक में तात्पर्य में लिखा है। जैसे कर्दम मुनि के साथ अध्यात्म की ये तेज बढ़ती, वैसे वंशीवदन बाबा जी महाराज का भी ऐसा था। नित्यानंद अवधूत का भी वो उदाहरण बताते थे। बंशीदास जी कभी कभी जब बोलते थे तो कोई मूर्ख आदमी बोलता है ऐसा सुनाई देता था, यानी कि उसका क्या अर्थ निकाले, समझ में आए ना आए, लेकिन वो बोले जाते हैं। तो उनके शब्द जब भी वो मयमनसिंह की बोली में बोलते थे तब तो और परेशान होते थे लोग, क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नवद्वीप के लोगों को मयमनसिंह जो उनकी बोली से क्या पता चलेगा, तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो पूर्ण रूप से बंगाली भी जानते थे और बोलते भी थे। तो यानी कि किसके सामने क्या बोलना है, कभी कभी हम लोग भी आपके साथ गुजराती में बात करने लगते हैं ऐसी परिस्थिति, लेकिन हमारी बातों में कोई दम नहीं होता। बंसी बदन दास भगवान की अंतरंग सेवा के ही बातें करते हैं, लेकिन कोई भी भाषा में, लेकिन एक की एक जगह की भाषा दूसरी जगह की भाषा में बोली जाए तो लोग बिल्कुल ना समझ रहे थे। पर तो ऐसा इनका सारा व्यवहार रहा है। कभी कभी बाबा जी की अपनी निजी इच्छा से ब्रजमंडल की लीला का भी वर्णन करते थे, कृष्ण लीला और कभी कभी नवद्वीप की लीला अंदर घुसा देते थे। कभी कभी इतने जोर से हंसते थे तो कभी कभी वो पागल की तरह गौर लीला और कृष्ण लीला की दोनों की सरीखाई करते करते अपनी जबान चलाते थे, और जबान भी बेढंगी टूटी फूटी भाषा बोलती थी। एक कहानी से दूसरी कहानी पर सीधे चढ़ जाते हैं। तो इस ढंग से लोगों को इनके पीछे भागना पड़ता था। जैसे स्थूल अवस्था में वो इतने जल्दी से चलते थे, भक्त लोग उनका पीछा करने में पीछे रह जाते थे, तो उसी तरह जबान भी यहां से ऐसी कुदाते थे तो दूसरी और दूसरी दिशा में टेढ़ी कर देते हैं। इसी तरह लोगों को समझने के लिए भी इनका मन चित्त इत्यादि पीछे दौड़ाना पड़ता था। कभी कभी वो अपने गोपाल से बातें करते थे और दूसरों की परवाह नहीं करते थे कि कौन है वहां, और कभी कभी जोर से चिल्ला उठे भक्तवत्सल हरि प्राण वल्लभ हरि। बाबा जी महाराज अपना ही रचना किए हुए भजन गाते थे। यदि ये सारे भजन भी बहुत सहज भाव से उनके मुख में से निकल आते थे, उनका न तो कोई करीबद्ध प्रास रहता था या कविता की दृष्टि से कोई जुड़ा हुआ या व्याकरण की दृष्टि से कोई तालमेल नहीं, लेकिन वो सारे ऐसे गाते थे जो उनके हृदय की भावना और जो सीधी सादी पवित्र भक्ति के माध्यम द्वारा निकलती थी, वो सिर्फ भगवान कृष्ण को ही समझाने के लिए बनी थी। उन्होंने कई हजारों ऐसी पंक्तियां बनाई हैं। वो अपने श्री विग्रह के अलावा दूसरों के साथ ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, बातें करना है तो उनके विग्रह से करते थे। वो दूसरों को सीधा नहीं बोलते थे, वो उसके विग्रह के द्वारा बुलाते थे। यानी कि वही विग्रह से प्रश्न करेगा बंशीदास बाबा जी, और विग्रह से जो उत्तर मिलेगा तो वही विग्रह को सुनाकर दूसरों को सुनाते थे। वो कभी कभी अपने ही शिष्यों को इतना ताड़ते थे और गालियां देते थे। ये गालियां हराम ज्यादा और बड़े सुवर जैसा, ऐसी बोली में उसे बोलते थे। ये हरामजादा कहां से पता? मुसलमानों को, हाँ, मजीदपुर डिस्ट्रिक्ट, सभी मुसलमान एरिया, तो मुसलमान सुअर को हराम बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा हराम होता है, इसलिए सुअर को हरामजादा बोलते हैं। नहीं तो बड़ा सुअर, हरामजादा यानी कि बड़ा सुअर। बंशीदास इनको जो जो मिलने आता था उनके भाव द्वारा ही जान लेते कि ये क्यों आया। यदि इनको कोई आदमी आया पसंद पड़ता है, और यदि कोई प्रश्न पूछता था तो वो अपने बाल गोपाल के सामने देखकर उनको उत्तर देते थे। और वो व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखते जिसने प्रश्न पूछा, और गोपाल जी को सुनाते हैं उनका उत्तर। तो जो लोग अच्छे दिल से बंशीदास जी का के पास आते थे जानकारी के लिए, तो उनके भावों के अनुसार उनको अच्छा उत्तर मिलता था, दूसरे को हरदूत कर देते थे, हटियो जाओ समय पर बात कर रहे हो। कभी कभी किसी के पूछे बिना भी ऐसा उत्तर देने लगते थे कि जो पूछने वाला था वो भी समसमा रह जाता था। कोई यदि पूछने का मौका नहीं लेकिन उसके मन में प्रश्न है तो वो बोले बिना उत्तर देने लगते थे अपने गोपाल को देखकर, और उस व्यक्ति का समाधान हो जाता था। ऐसे बंशीदास बाबा जी महाराज, लेकिन ये सब में उन्होंने एक महत्व का सिद्धांत बना रखा था कि भगवान को जो अनुकूल है वो ही मैं स्वीकारूंगा, प्रतिकूल है उसका त्याग करूंगा। तो ये सारे व्यवहार में यही सिद्धांत का उपयोग करते थे। किसी के साथ बातचीत करना है तो भी यही सिद्धांत लगेगा, और कोई और व्यवहार है तो भी। इसीलिए असत्संग छाड़ी रे वैष्णव आचार, वो वैसे ही मानसिक रूप से भी वो असंगत का कोई कोई सराहना नहीं करते किसी को ऐसे जो असंग देने वाला है उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करते। मानसिक रूप से भी वो अछूत रहते थे। किसी की सामने बोलकर वो जवाब देते ही नहीं थे। बंशीदास बाबा जी महाराज ज्यादातर नवद्वीप में ही रहे और खास करके रानीगंज इलाके में। वहां उन्होंने अपनी एक छोटी सी भजन कुटी बनाई थी। उसमें श्री गौर गदाधर और नित्यानंद, श्री श्री राधा गोविंद और बाल गोपाल, ये सारे विग्रह रखे थे। वो सारे दिन और रात उनके साथ बातें करते रहते थे और अपने शिव विग्रह को कोपिन के अलावा ज्यादा कोई कपड़े पहनाते ही नहीं थे। इनको भी बाबा जी बना रखे थे। जबकि गौर निताय तो 3 फुट ऊंचे थे और नीम की बने थे। राधा गोविंद 6 इंच थे और अष्ट धातु के बने थे। वो भी भगवान की ये सेवा पूजा अपनी ही पद्धति से करते थे। वो कोई नीति नियमों का पालन नहीं करते थे। उनके पास न तो कोई नियमावली थी, न तो उनको बिठाने के लिए सिंहासन था, कोई भी ऐसी विशिष्ट रचना नहीं थी इनके कुटिया में। और बिना मंत्र बोले पूजा, घंटी बजाना इत्यादि करते रहते थे और भगवान को भोग लगाते थे। जस्ट खा लो ऐसे ही, मत्था ना टिके, घंटी ना बजा, नहीं चल जाएगा सब। कभी कभी अपने हाथों से खिलाते थे और कभी कभी भूखे मारते थे। कभी कभी वो स्वयं पकाते थे और खास करके तले हुए चने, कभी कभी वो खिचड़ी भी पकाते थे। वहां कोई समय ठीक ढंग की कोई पद्धति या कोई इनका कोई स्टैंडर्ड कुछ नहीं था। कभी कभी अपने शिव विग्रह के साथ झगड़ा भी मोल लेते थे। झगड़ते थे इनके साथ, लेकिन दुनिया के साथ तो अबोला रखा है। जब भी वो उठते थे तो संस्कृत में एक श्लोक बोलते थे जो मायावादियों में बहुत सारा प्रचलित था, अखंड मंगलाकारम सचराचरम, क्या व्याप्तम सचराचरम, अखंड मंगलाकारम। लेकिन उसके बाद वो भाव में चले जाते हैं। कभी कभी अपने श्री विग्रह के साथ अबोला भी लेते थे, बोलते ही नहीं। तो जस्ट वो क्या कहना चाहते हैं उसको ही सुनते रहते थे, सामने कोई उत्तर नहीं देते हैं। कभी कभी अपने श्री विग्रह को पूछते थे, क्या आपने खाया? अरे खिलाए तो खाए ना। लेकिन उनको पूछते, क्या आपने खा लिया? कैसा लगा? किसी ने भी ये नहीं सुना कभी भी कि उन्होंने अपने सी विग्रह से सुना क्या था, कैसा था, क्या नहीं खाया, सब वो दूसरों से बातें नहीं करते हैं। जो बातें अपने सी विग्रहों से करते थे वो दूसरों को नहीं करते थे। कभी कभी कपड़े बदलते नहीं थे, जो टूटे फूटे वस्त्र जरी पुराने होते हैं वो जर्जरित अवस्था में ही बने रहते हैं। भगवान भी जब वो पुरी या वृंदावन जाते तो अपने हाथ में गोपाल को उठाए घूमते थे, और उसका जो सेवक दूसरी सारी श्री विग्रह को कपड़ों में लपेट करके वो खुद इनके पीछे एक टोकरी में रख कर चलता था। कैसे भी वो मुसाफरी करते हैं, चाहे वो बैलगाड़ी में जाते या नाव में जाते या चल के जाते, वंशीदास हमेशा अपने गोपाल से बातें करते थे। जब रुकते थे तो वो अपने ही टेंट में, तंबू में बने रहते थे, और किसी के पास में वो बाहर जाना घूमना इसमें कोई रुचि नहीं रखते थे। वो अपने ही श्री विग्रह के साथ बने रहते थे। सो वंशीदास बाबा जी कृष्ण को ही चाहते थे, हा? और दूसरी कोई चीज जानते नहीं थे। और खास करके वात्सल्य रस में अपने श्री विग्रह को की सेवा करते थे। और खास करके गोपाल इनका प्रिय बेटा, उसकी देखभाल काफी करते थे। जैसे एक पिता रखता है उसी तरह, तो इसी तरह कृष्ण भगवान की ये पूजा करते थे, जबकि इसमें कोई नीति नियम और पद्धतियों का भाव नहीं रहता। तो ये रागानुगा भक्ति का विषय है, जो सहज भाव में ही समझा जाता है। लेकिन वो सहज भाव कब आता है? सहजिया बनकर सहज भाव नहीं आता। जिसको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण तरह नियंत्रण है, अपने मन पर पूर्णतया नियंत्रण, वो किसी भी बाहरी भाषा हो या किसी को सहन नहीं करता, वो सब बाधा रूप लगता है उसको। तो भगवान की पूर्ण शरणागति लेने के बाद ही तो भगवान की तरफदारी वाला सारी सेवा का भाव और अनायास पैदा होता है। तो आज इन दो महानुभाव श्री वंशीदास बाबा जी महाराज और रघुनंदन आचार्य इनका तिरुभाव है। श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे विशिष्ट भक्तों द्वारा ही हमें चैतन्य महाप्रभु के औदार्यता का पता चलता है। हरे कृष्णा।